الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نکاح اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو عبادت بن جاتا ہے. دلہا دلہن نکاح سے پہلے اپنی نیتیں درست کر لیں. ایک نیت یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری نیت یہ کرے کہ نکاح کی برکت سے میری آنکھ اور میری شرم کی جگہ گناہ سے بچ جاوے. تیسری نیت یہ کرے کہ اولاد صالح اس کی برکت سے حاصل ہو. یہ تینوں نیتیں ایسی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. نکاح جہاں ایک ضرورت ہے, جب اچھی نیت سے کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا. عبادت, نکاح, معاملات, معاشرت, اس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے, بھلائی ہے. دنیا میں بھی بھلائی ہے, آخرت میں بھی بھلائی ہے. یہ جو حدیث شریف کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے. جس نکاح کے اندر تکلیف اٹھانا, بوجھ اٹھانا, خرچ کرنا کم سے کم ہوگا, اس نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا کریں گے. جس نکاح کے اندر خرچ کم ہو, الجھن ٹینشن کم ہو, ذمہ داریاں کم ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت ملتی ہے. اب جس قدر زیادہ خرچ کریں گے اتنی الجھن بھی زیادہ ہوگی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, کہاں کھلائیں گے, کون باورچی پکائے گا, اس کے لیے دعوت نامے, انوائٹیشن کارڈ تقسیم کرنے ہیں, پھر مرد عورتوں کا مجمع بڑا جمع ہو ان کو کنٹرول کرنا, بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر سادہ سمپل نکاح کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بڑی خیر و برکت ہوگی. ایک زمانہ تھا कि जब शादियों के अंदर फजूल खर्ची थे, यानी जरूरत से ज्यादा खर्च होते थे, और अब ये जमाना है कि शादियों के अंदर एक नहीं दसियों गुनाह कबीरा वजूद में आते हैं, कई कई गुनाह कबीरा शादियों में हो रहे हैं। शादियों के अंदर औरतें बन ठन के आती है, बेपर्दा आती है, मर्दों के साथ खुल्लम खुल्ला वो मिक्स होती है, मिलना जुलना होता है। ये बहुत गुनाह का खतरनाक काम है। नमाजें कजा होती है शादियों के अंदर, शादी की दावतों की वजह से नमाजें कजा होती है। और अब तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, फार्म हाउसों में पार्टी प्लॉटों पर जाकर शादियों में डांस होने लगे। मेरे मुसलमान भाइयों, जिस उम्मत के लाखों मुसलमान इस वक्त कैंप में और टेंट के अंदर और कैंप और टेंट के बाहर आसमान के नीचे जमीन पर दो वक्त की रोटी जिनको मयसर नहीं, ऐसी भूख में जिस उम्मत के लाखों इंसान जिंदगी गुजारते हो, वो उम्मत अगर ऐसी भपकेदार फजूल खर्चियों वाली खूब गुनाहों वाली शादियां करेगी, अल्लाह नाराज होंगे, अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, और कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह बताओगे। दीनी भाइयों, बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है शादियों के अंदर, एंगेजमेंट और मंगनियों के प्रोग्राम के अंदर जो गुनाह और गलत काम हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, काबू में करना जरूरी है। अल्लाह ने दौलत दी है, पैसे वाला बनाया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको गलत जगह पर लगाया जाए, गुनाह के कामों में लगाया जाए, ये इसका मतलब नहीं है। हदीसे पाक में आता है, कयामत के दिन जो पांच सवाल के जवाब अल्लाह को देने, उसमें दो सवाल माल के मुताल्लिक है, दौलत के मुताल्लिक है। मिन अयन इक्तसबहु व अयन अनफकहु, कहां से कमाते थे, कहां खर्च करते थे, कमाई का जरिया हलाल था या हराम था, ये कमाई के बारे में कयामत में अल्लाह को जवाब देना है। फिर खर्च कहां करते, उसका भी हिसाब अल्लाह को देना है। ये नहीं है कि इस दौलत के मामले में हम आजाद हैं, जहां चाहे जिस तरह चाहे खर्च करे, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मुसलमान ईमान की निस्बत पर अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी दौलत को खर्च करे, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये पैसा ये दौलत इस तरह उड़ाने में गुनाहों के कामों में लगा, तो अल्लाह ताला के यहां इसका हिसाब देना पड़ेगा। और भाइयों, बहुत दर्द से आपको कहता हूं, करोड़पतियों को रोड़पति बनते इस आंखों ने देखा है, अल्लाह के घर में बैठ के गवाही दे रहा हूं। करोड़पति लोग जब अल्लाह की दी हुई दौलत को गलत तरीके से खर्च किया, तो वो रोड पर खड़े होकर भिखारी बने। अगर अल्लाह की दी हुई दौलत को गलत तरीके से खर्च करोगे, तो जो अल्लाह देते हैं उनको लेने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए अल्लाह वास्ते अपनी जात पे रहम करो। अल्लाह पैसे देते हैं, जायज काम में लगाओ, सुन्नत कामों में लगाओ, नेकी के कामों में लगाओ, उसको इस तरीके से गुनाहों वाली शादियों में, शरीयत के खिलाफ शादियों के अंदर हरगिज़ मत लगाओ। एक शादी का छोटा सा किस्सा सुना देता हूं। हम सब के बड़े हजरत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, फजाइल आमाल किताब मस्जिद मस्जिद में पढ़ी जाती है, दुनिया भर में पढ़ी जाती है, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। इन अल्लाह वालों की जिंदगी से हमें शादियां भी सीखनी है कि शादी कैसी होनी चाहिए। आप बीती में हजरत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर की शादियों के वाकियात खुद हजरत ने अपने कलम से लिखे। 1354 हिजरी 2 मुहर्रम को हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर पहुंचे। मगरिब के वक्त पहुंचे होंगे, जाकर के अपने भतीजे कुतुबे आलम हजरत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को कहा, कल मदरसा मजाइलूम का जलसा हो रहा है, दिल चाहता है कि इनाम और यूसुफ का निकाह करा दो। कौन है यूसुफ और इनाम, जिनको पूरी दुनिया बाद में कहती है हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी मौलाना मोहम्मद इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो उस वक्त सहारनपुर में पढ़ते थे और हजरत शेख की दोनों बेटियों से उनका एंगेजमेंट हुआ था। तो कहा, कल के जलसे में दिल चाहता है कि हजरत मदनी तशरीफ ला रहे तो इनाम और यूसुफ का निकाह पढ़वा दो। तो हजरत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, चचा जान आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे फरमाएंगे, सुन रहे हो, कल निकाह है और आज लड़की के बाप को खबर दे रहे कि कल निकाह पढ़ाना है। हजरत शेख ज़करिया साहब ने मंजूर फरमा लिया। ईशा के बाद घर पहुंचे और घर पहुंचकर हजरत ने अपनी अहलिया को यानी लड़कियों की दुल्हनों की मां से कहा कि चचा जान फरमा रहे हैं कि कल के जलसे में बेटियों के निकाह हो जाए। तो दुल्हनों की मां हजरत शेख ज़करिया साहब की अहलिया हजरत से कहती है कि 2-4 दिन पहले बतला देते तो एकाध जोड़ी कपड़े तो सिलवा लेते, शादी के कपड़े तो सिलवा लेते। तो हजरत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मुझे तो ये खबर है कि वो कपड़े पहन के फिरती है, मैं नहीं समझता था कि वो नंगी फिरती है। हजरत ने ये फरमाया कि पहने हुए कपड़ों के अंदर भी निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है। ये जवाब दिया तो अहलिया बिल्कुल खामोश, चुप, एक लफ्ज नहीं। दूसरे दिन निकाह हो गया, एक दिन पहले खबर, दूसरे दिन निकाह हो गया, रुख्सती नहीं हुई। दूसरे साल 1355 रबीउल अव्वल के महीने में मदरसा मजाइलूम की मजलिसे सरपरस्तान हो रही थी, कमेटी की मीटिंग हो रही थी, तो हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर पहुंचे। जाकर के हजरत शेख ज़करिया साहब से कहा कि कल मजलिस के बाद जब मैं निजामुद्दीन वापस जाऊंगा तो यूसुफ और इनाम की दुल्हनों को भी साथ लेके जाऊंगा, यानी कल रुख्सती होगी एक साल के बाद। तो हजरत शेख ज़करिया साहब ने अर्ज किया, चचा जान ये दोनों तो अभी मदरसे में पढ़ रहे हैं, यहीं रुख्सती हो जाए, मेरे घर ही में रुख्सती हो जाए, दुल्हन के घर में ही रुख्सती हो जाए। फिर हजरत शेख ने हदीस सुनाई कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रुख्सती حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہی کے گھر میں ہوئی تھی. تو کہا یہیں پر رخصتی ہو جائے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ میرے چچا جان ہمیشہ میرے لیے یہ فرماتے تھے کہ زکریا کو اپنے مطلب کی حدیث بہت یاد رہتی ہے. منظور خوشی سے منظور ہو بھی. عصر کی نماز کے وقت حضرت شیخ نے گھر جا کر کے دوسری بیٹیوں سے عورتوں سے کہا ان دونوں کو تیار کر دو, آج عشاء کی نماز کے بعد ان کی رخصتی ہونے والی ہے. عصر کے وقت فرمایا دونوں بہنوں کو تیار کرا دو, عصر کے بعد آج عشاء بعد ان کی رخصتی ہونے والی ہے. جلدی جلدی تیار کیا, عشاء کے بعد رخصتی ہوئی. اور عجیب رخصتی کہ جہاں مانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا قیام تھا, بارش شروع ہو گئی, کچا گھر, تو بارش میں دلہا دلہن دکھتے بھی رہے. اس طرح کے سادے سمپل نکاح, سنت طریقے کے نکاح, تو اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو پورے عالم میں دین کی محنت کے لیے قبول فرماتے. آج ہم بہت سنتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے تبلیغ کا کام یوں کیا, حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ علمی فیوز ہے, لیکن ان حضرات کی گھروں میں شادیاں کیسے ہوئی, رخصتیاں کیسے ہوئی, وہ بھی ہم سیکھے اور اس کو بھی اپنے گھر میں اپنا لے, تو ان اکابر کے نقشے قدم پر ہم صحیح معنی میں کہے جائیں. بہت ضرورت ہے کہ امت میں شادیوں کی نسبت سے جو فضول خرچیاں ہو رہی ہے, گناہ ہو رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی, روکنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالی امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ وہ دولت کو, مال کو حلال طریقے سے کمائیں اور صحیح کاموں کے اندر لگائیں, اور غلط جگہ لگانے سے اللہ بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے, اور اللہ ان نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائے, اور اللہ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے. بہت بڑی ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ, حضرت کے شاگرد, حضرت کے فیض یافتہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے. اللہ حضرت کو صحت عافیت عطا فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے, اور حضرت کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرماتے رہے. انشاءاللہ حضرت نکاح بھی پڑھائیں گے اور حضرت دعا بھی فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت سیکھنے کی اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.